प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग चौथा, लेक्चर नंबर 273। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वर्षायाणं, नमो लोये सौवसाणं। सुर असुर नर पति वंदने प्रविनष्ट घाति कर्मने प्रणमन करू धर्म कर्ता तीर्थ श्री महावीर ने वैशेष तीर्थंकर ने सिद्ध शुद्धास्तित्वने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तपवीर्या चरण संयुक्तने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने वंदु
अरहंतने अरहंतने सौ सिद्धने नमस्करण कर ये रीते कणधर अने अध्यापको ने सर्वसाहु समूहने तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करू साम्यनी जे नाथि शिव प्राप्ति बने।
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य उत्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए थे वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से ये चौथी पुस्तक है, प्रवचन सुधा भाग चार, और उसके पृष्ठ संख्या 67 पर हम आ गए, 67। यहाँ से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखो बहन, ये ग्रंथ का नाम है प्रवचन सार। कुनकुंदाचार्य हो गए 2000 साल पहले, उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। ये विशेषता मालूम है इसकी, कुनकुंदाचार्य विधेय क्षेत्र में गए थे, सीमंदर तीर्थंकर जहाँ विराजमान है साक्षात गए थे वहाँ पर, और वहां से आने के बाद ये ग्रंथों की रचना की। यानी डायरेक्ट तीर्थंकर की वाणी सुनी उन्होंने, 8 दिन तक वहां रहे थे और यहाँ आकर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, उसमें से प्रवचन सार। प्रवचन वचन यानी दिव्य ध्वनि का सार उसमें आ गया है। वैसे तो महावीर भगवान से तो वाणी चल ही आ रही थी, आचार्यों की परंपरा से, क्योंकि आचार्य अपने शिष्यों को सिखाते, वो केवल सिखाते नहीं है, आत्मा का अनुभव करके वो बात आगे बढ़ाते हैं। खाली सुना और दूसरे को सिखा ऐसा नहीं है, इसलिए उनके पास तो पहले से तो वो तो आत्मज्ञानी तो थे ही थे, परंतु यहाँ भगवान की वाणी सुनकर विशेष और जो कोई बात हुई है वो सब उन्होंने ग्रंथों में लिखी है। ये पहले में पहले ये प्रवचन सार बिल्कुल बेसिक है, जिसको कहेंगे नीव फंडामेंटल्स। इस विश्व में क्या है, तो द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, क्योंकि जो कोई चीज है, जो कोई पदार्थ है, वो द्रव्य गुण पर्याय में ही होता है। हमें जो कोई दिखाई देते आप कहेंगे ये क्या है, ये तो ये कौन सा द्रव्य, तो कहते इसका कौन सा, तो मूल जो परमाणु इसका द्रव्य है, जिसको हम पुद्गल कहते हैं। अनेक पुद्गल परमाणु इकट्ठे होकर ये ऐसे एक बंधी हुई अवस्था, हमको लगता है एक चीज है, तो इसमें अनंत परमाणु है, इसको कहते हैं पुद्गल द्रव्य। आप कौन सा द्रव्य हो?
पुद्गल का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, जरा समझाए तो अच्छा रहे।
पुद्गल यानी जिसको हम मैटर कहते हैं,
नहीं नहीं,
उसकी विशेषता क्या है, नाम कैसे तैयार हो? पुद और गल, पुद यानी इकट्ठा होना, दो या अधिक परमाणु एक दूसरे से बनते हैं, उसका स्कंद तैयार होता है। ये जो एक चीज दिखती है हमको, इसको हम कहेंगे स्कंद। दो तीन संख्यात असंख्यात अनंत परमाणु, अभी दिखते तो इतने से, इसमें अनंत परमाणु एक दूसरे से चिपके हुए, जुड़े हुए है। पुद यानी जुड़ना, गल यानी बिखरना, वो अपने स्वभाव से ही उसमें जुड़ना गलना चलता रहता है पुद्गल में।
ये पुद्गल द्रव्य को समझना कैसे, मतलब?
हाँ, पुद्गल द्रव्य को समझना कैसे, देखो पुद्गल द्रव्य इसे हम सामान्य से कहेंगे तो क्या, जो कुछ हमें दिखाई देता है वो सारा पुद्गल है, क्योंकि जीव तो अरूप ही है, दिखाई नहीं देता है, हम स्वयं जानने वाले हैं। परंतु कोई कहता आत्मा कहाँ दिखा, अरे आत्मा दिखने की चीज नहीं है, वो अनुभवने की चीज है। तो ये सब दिखता है वो क्या है, वो पुद्गल है। ये तो एक बिल्कुल स्थूल बात हुई। दूसरी बात कहना है तो पांचों इंद्रियों के द्वारा जो जाना जाता है, यानी जो दिखता नहीं मैं जो स्मेल आती जिसकी, वो क्या है, वो पुद्गल है। अब हवा दिखती नहीं है पर वो स्पर्श होता है उसका, ठंडा गर्म, तो वो क्या है, पुद्गल है। तो जो पांचों ही इंद्रियों के द्वारा, यानी स्पर्श के द्वारा, रसना के द्वारा, घ्राण के द्वारा आवाज सुनाई दे रही है, वो क्या है, पुद्गल है। तो जो जो पांचों इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है वो सारा पुद्गल है। ये तो हम यहाँ तक आ गए,
अभी आप बोल रहे वो पुद्गल है,
ये पुद्गल है।
अच्छा,
ये शब्द जो है वो पुद्गल की रचना है, वो पुद्गल के स्कंद है। वो तो साइंस में भी उसको साउंड वेव्स कहते हैं ना, हाँ उसको, वह तो उसके प्रयोग भी करते हैं, हमने भी किए थे जब हम कॉलेज में थे, तो अपने किए कि नहीं किए? हाँ। तो ये पुद्गल है। तो क्या पुद्गल वो दिखाई दे वही पुद्गल है, जो सुनाई दे वही पुद्गल है? नहीं, इससे भी सूक्ष्म पुद्गल है जो पांचों इंद्रियों के द्वारा जाने नहीं जाते। तो कैसे समझना वो पुद्गल है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये गुण पाए जाते हैं, परंतु वो हमारे इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य हो यानी ग्रास हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारी इंद्रियों की कोई रेंज है ना, सेंसरी ऑर्गन्स जो है, जैसे हमारे सुनने की जो अमुक कितने साउंड वेव्स हम सुन सकते, उसके ऊपर के और नीचे के नहीं सुन सकते, देख हर एक में ऐसा है। तो परंतु वो है कि नहीं वहां पर, जैसे आपकी वो हम कहते हैं मोबाइल की रेंज नहीं है, रेडिएशंस, वो रेडिएशंस दे रहे दिखते कहाँ है आपको, समझ में आती? वो है ना, है वो पुद्गल है। हाँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं?
एक्सरे जो होता है,
एक्सरे भी, ये जो सारे वो पौद्गलिक ही है, जो आप इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, न्यूट्रॉन्स, ये तो क्या है, वो तो ऐसे थोड़े दिख रहे आपको, वो सारा ही पुद्गल है। तो प्रत्येक जो कोई चीज है,
मेरा और एक प्रश्न है।
हाँ,
अभी आपने बताया कि कोई बोलता है तो वो पुद्गल है, यानी पुद्गल की रचना है, समझ लो पुद्गल।
हाँ,
का परिणमन है।
हाँ,
लेकिन उसमें हमें ना स्पर्श ख्याल में आता है, ना उसका रस है, गंध है, वर्ण है।
हाँ,
तो फिर उसको कैसा माने कि वो पुद्गल है?
हाँ, आपका ये प्रश्न है, ये हवा आपको लगती है कि नहीं, पर दिखती नहीं है, तो उसमें बाकी गुण है कि नहीं है, वो कैसे मानेंगे? नहीं, ऐसा ही नहीं है, ऐसा नहीं। द्रव्य उसको कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, अनेक गुणों से बना हुआ वो द्रव्य है। जैसे हम कहते हैं वो सोना है, सोना को कैसे पहचानेंगे? पीला है, उसकी विशिष्ट हो तो कंसिस्टेंसी होती है, जैसे चिकनापन है, चमकदार है। अब जो बहुत सारे गुण है उसके अंदर, ये तो हमने सोने को द्रव्य कहा, परंतु सोना है द्रव्य नहीं, ये भी अनंत परमाणु का पिंड है। पर समझे कैसे, तो उदाहरण देके समझाया जाता है। तो इसमें जहाँ एक गुण है वहां उस द्रव्य के सभी गुण होते ही होते हैं। हवा में से हमको केवल वो स्पर्श के द्वारा वो ठंडा गर्म ही ख्याल में आ रहा है, तो उसमें टेस्ट होगी कि नहीं, उसमें गंध होगी कि नहीं होगी, उसका वर्ण, अरे हवा का कहाँ वर्ण होता है? वो वर्ण हमें अपने इंद्रियों के द्वारा नहीं दिखाई देता है। भगवान के ज्ञान में तो सब कुछ आता है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में, हम जो इंद्रियों से नहीं भी जानते उनके तो परमाणु तक को जानते वो, और परमाणु के अंदर जो स्पर्श रस गंध वर्ण तो गुण हुए, और उसकी जो पर्याय होती है पर्याय अवस्था, जैसे वर्ण ये गुण है, जैसे हमने आम लाया केरी कौन सी ग्रीन, तो उसमें वर्ण है कि नहीं, वर्ण की पर्याय कौन सी थी ग्रीन वाली हरी रंग की, अब वो पलट कर पीली हुई तो वर्ण चला गया क्या, वर्ण कायम है, उसकी अवस्था पहले हरी थी अब वो पीली हो गई। गुण हमेशा कायम रहता है, कब तक, अनादि से अनंत, क्योंकि द्रव्य हम उसी को कहते हैं जो गुणों का समूह होता है, गुणों का पिंड होता है, और प्रत्येक द्रव्य के उसके अपने गुण, उसको छोड़कर कभी बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि गुणों के पूरे समूह को ही हम द्रव्य कहते हैं। तो हम और आप कोई द्रव्य है कि नहीं, यह चीज दिखाई दे रहा है, ये दिखता है वो क्या है, बोलो दिखता है वो क्या है, पुद्गल, यानी जो हम आप जो देख रहे हैं वो क्या दिख रहा है, पुद्गल, पर ये पुद्गल जानने का काम करता है, उसमें कोई जानने का गुण ही नहीं है, पर यहाँ जानने का कार्य हो रहा है ना, वो कार्य कौन कर रहा है, मैं यानी जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य है तो उसके अपने गुण हो गए कि नहीं हो गए, तो हमने शास्त्र में पढ़े उसमें ज्ञान है दर्शन है चारित्र है, अरे सुख है, सुख गुण किसका है, मेरा जीव का, हाँ, और हम वो सुख कहाँ ढूंढ रहे, बाहर, अभी आम का सीजन है तो आम में से सुख आएगा, कपड़ों में से सुख आएगा, घर में से सुख आएगा, और कहाँ कहाँ से सुख बाहर से आएगा, ये अनादि से न, अभी इसी भाव में ना पहले अनेक हम भाव करते आए हैं, भूल क्या हुई है, हमने सुख तो हमारा गुण है, उसकी हमारी दुख रूप पर्याय चल रही है, क्यों, क्योंकि हम सुख चाहते हैं, इच्छा किसकी होती जो अपने पास नहीं है, आप सुखी होते तो सुख चाहते क्यों, तो सुख चाह रहे हो इसका अर्थ है आप दुखी हो, और वो कहाँ से चाह रहे हैं, बाहर से, पर से, तो कब मिलेगा पर से उमा बेन, और जो अपने में है वो पर से कैसे मिलेगा, हाँ हाँ, आपका प्रश्न ऐसा है, हम दुखी ऐसा लगता ही नहीं है, हम सुखी है ऐसा ही लगता है और सुखी होना चाहते हैं, तो ये जो इच्छा हो रही है वो सुख का निशानी है कि दुख की निशानी है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, चाहिए वाले कभी मिटती नहीं बात, ये भोजन की तो इच्छा हुई, अब सोने की इच्छा हुई, चाय पीने की इच्छा हुई, कुछ खाने की इच्छा हुई, बाहर से कुछ खरीदने की इच्छा हुई, और क्या क्या, नहीं नहीं अभी चल चलो बेटियों को जाके मिले, चलो कोई लोग गेस्ट आए तो अच्छा है, ये इच्छाएं क्या दर्शाती है,
ये बात ऐसी है कि जैसा द्रव्यों का यानी वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, इसको यहाँ मिथ्या मान्यता यानी खोटी मान्यता कहे, तो पहले में पहले मैं सुखी हूँ और अधिक सुख चाहती हूँ ऐसा आपका कहना है, तो पहले ये नक्की करो सुख रियली आपके पास है क्या, जो दुख है उसमें कम आकुलता होगी तो हम सुखी,
यानी कम दुखी को हम सुखी मान रहे हैं,
हाँ, और हम अनुकूलता बाह्य संयोगों से प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, तो संयोग आपको सुखी करेंगे कि नहीं, ये हमें इस तरह से सोचना है। अभी मेरा और एक प्रश्न है आपके लिए, आप कह रहे हैं हमने सुना है आपसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, तो ये अभी आप बहुत टाइम से आप बता रहे हैं कि ये जो भाषा निकलती है किसकी, तीर्थंकर की, वो भी उनकी नहीं है, यानी इन शॉर्ट जीव बोल ही नहीं सकता है ऐसा आपने बताया, तो फिर वो कहाँ तक सही है, ये हमारा प्रश्न
है। हाँ, आपके प्रश्न है, जीव बोलता नहीं क्योंकि ये बोलना ही नहीं, भाषा वर्गणा है, वो परमाणुओं का जो कोई ग्रुप है वो भाषा वर्गणा शब्द रूप से परिणमित होती है, तो उसको हम कहेंगे, परंतु यहाँ जो कार्य हो रहा है ना, यहाँ ओढ़ भी हिल रहे हैं, वो स्वरयंत्र वो भी हिल रहा है, उसमें वो हवा का बाहर निकलना है, उसमें विशिष्ट प्रकार के आवाज शब्द निकल रहे हैं, और हम तो कह रहे हैं ना हमारी इच्छा भी हो रही है, और हमें क्या लगता है हम बोल रहे हैं, ऐसा ही लगता है ना, देखो हम चाहे तो चुप बैठते हैं चाहे तो बोलते हैं, तो तीर्थंकर भी बोले ना केवल ज्ञानी है तभी तो ओम ध्वनि निकलती है, नहीं तो हमारी आपकी क्यों नहीं निकलती, ऐसा प्रश्न आपका है, तो ये वो भाषा वर्गना ही शब्द रूप परिणमित होती है, यही प्रश्न है ना आपका? हम नहीं
हाँ, भाषा वर्गना का कार्य है,
कार्य
आप ये कहना चाहते कि जीव बोलता नहीं।
हाँ, जीव क्या कार्य कर सकता है, उसके अपने गुणों की अवस्था पलटती है, उसको उसका कार्य कहते हैं। कार्य किसको कहेंगे? गुण तो कायम है, उन गुणों की जो अवस्था होती है अवस्था को हम पर्याय कहते हैं। प्रत्येक गुण हर समय अपनी अपनी अवस्था स्वयं करता है। द्रव्य इतना सेल्फ सफिशिएंट है, स्वयं सिद्ध है, वो अपनी पर्याय अपनी अवस्था स्वयं करता है प्रत्येक गुण की। ज्ञान में क्या हो रहा है? जानना 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 जानना। हमने आंखें खोली और सामने देखा और ये सब दिखाई दिया, क्या कष्ट किया आपने? क्योंकि जानना हमारा स्वभाव है, तो जीव हर समय जान रहा है। आप कहेंगे सुख भी आपका स्वभाव है, अपन स्वभाव है, परंतु उसको हमने माना नहीं है। ये हमने क्या है, अपना जो स्वभाव है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कितनी कैपेसिटी सामर्थ्य है, उस पर विश्वास नहीं किया। और अपने को क्या माना, ये जो शरीर है ना प्राप्त, ये हम मैं हूँ ऐसे मान लिया, मनुष्य मैं हूँ। तो आप क्या कहेंगे, तो मनुष्य नहीं तो क्या मैं गधा हूँ क्या? उसकी बात नहीं है। प्राप्त शरीर जितना ही मैं हूँ, यहाँ तो मैं एक जीव हूँ, और ये जो दिख रहा है वो क्या है, कौन सा द्रव्य? पुद्गल है। कितने हैं? अनंत है। वो अनंतानंत पुद्गल परमाणु का पिंड है जो शरीर है, और मैं तो एक हूँ। यहाँ जानने का जो कार्य हो रहा है, सुख वाली बात है, इच्छा भी जो हो रही है, अभी तो इच्छा को भी उसी में रखो, वो जीव की है, वो शरीर को कोई इच्छा विच्छा कुछ नहीं हो रही है। शरीर का जो कुछ गमन हो रहा है, हिलचाल हो रही है, जो कुछ हो रहा है, वो शरीर की अवस्था शरीर में हो रही है। यहाँ यही विषय चल रहा है अपने इस गाथा में। ये जो परमाणु का कार्य जो पद्माणु स्वयं करते हैं, तो भाषा ये पुद्गल परमाणु से बना हुआ है, वो परमाणु उसका करता है। मैं जीव हूँ तो मेरा कार्य, मेरी अवस्था कौन सी है, जानना चल रहा है, विशेष मानना मैं कौन हूँ, ये हम मान रहे कहीं ना कहीं, वो कार्य जीव का है, भले गलत हो या सही हो, वो कार्य जीव का जुदा है और शरीर का जुदा है। लोगों को क्या लगता है, ये ब्रेन ही हमारा जानता है, ब्रेन ऑर्डर देता है तो ये ऐसा होता है, तो ये कोई मुर्दा है यहाँ पर, तो वहाँ ब्रेन है कि नहीं
है?
क्या चला गया जीव के साथ?
नहीं, ब्रेन है।
ब्रेन छोड़ कर गया?
नहीं,
छोड़ गया। जानने वाला चला गया है, वो ब्रेन जो कुछ निमित्त होगा।
कहना बराबर नहीं है ब्रेन, बता तो
इन्हें जीव ने उसको एक्टिवेट किया वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है।
देखो हम दुबई गए थे, वहाँ एक ऐसे ही जिसको हम कहेंगे दिगंबर जैन नहीं थे, अभी इन शॉर्ट, तो बोले क्या बात कर रहे हैं आप, देखो हमारे पास यहाँ दुबई में बहुत खिलौने मिलते हैं, उसके अंदर बैटरी डालेंगे तो टालियाँ बजाता है, ऐसा ऐसा करता है, कुछ कुछ करता है, वैसा ये जो शरीर है उसके अंदर जीव जाएगा और जीव निकल गया तो शरीर ऐसा कैसा पड़ा रहता है, तो क्या ये बात सही है, ये मैं आपसे पूछता हूँ। आपने क्या बोला, एक्टिवेट करता है? बिल्कुल नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करेगा।
देखो वो नहीं तो पुद्गल के गुण, जीव के गुण उसमें चले जाएंगे। तो इतने 50 साल से जीव और शरीर साथ में है, मराठी में एक कहावत है आपको मालूम होगी, ढवळ्या शेजारी बांधला पोळ्या, वाण नहीं पण गुण लागला। सुना कि नहीं? दो बैल है, ढवळ्याने एक सफेद है और पौड़ा ने वो पीले लाल कलर का है, तो वो एक साथ बांधे हैं, क्योंकि एक वो किसान के है तो दोनों एक साथ रोज बांधते बांधते, तो एक का कलर दूसरे को लगेगा क्या? नहीं, गुण लागला, गुण ने एक का जो आदत है वो दूसरा सीख लेता है। ऐसा जीव और पुद्गल अभी 50-60-70 साल से इकट्ठा रह रहे है, तो थोड़ा हमारा ये हमारा कहते ना ये पुद्गल जानने का थोड़ा सीख जाएगा कि नहीं जाएगा?
नहीं।
और जो आत्मा है वो थोड़ा काला पीला गोरा कुछ होगा कि नहीं होगा, ये समझना। अपने गुण छोड़कर पर के गुण में कोई हेरा फेरी नहीं होती है। हम मानते कि शरीर को क्या अक्कल है, हम सब करते तभी होता है। तो शरीर की यानी परमाणु की अवस्था परमाणु में स्वयं के कारण। जीव की भूल क्या हुई यहाँ पर? उसने ये मैं हूँ ऐसा मान लिया, यही उसकी भूल है और कुछ भूल नहीं है। धर्म क्या होता है? बस ये भूल सुधारना ही धर्म है और कोई धर्म नहीं है। कोई उठक बैठक नहीं करना है, उपास नहीं करना है, कोई यात्रा नहीं करनी है, कोई पर्वत नहीं चढ़ना है, कोई पोथी नहीं पढ़ना है, उसी में धर्म मान के रखा है कि हमने केश लोच किया, हमने वस्त्र छोड़ दिए, हम दिगंबर हो गए तो हम हो गए, हमने धर्म किया। कुछ नहीं, मैं जीव हूँ, मेरे में क्या गुण है और उसके पर्याय मेरे स्वयं से होते हैं, मैं दूसरे का कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये पहले में पहले मानना है। यही से धर्म की शुरुआत होती है। इतना आसान है और हमने उसको कठिन मान के बैठे हैं। कुछ न कुछ क्रिया करने से मैं आगे बढ़ा ऐसा लगता है। विषय यहाँ यही चल रहा है, ये जो जीव और हाँ
एक प्रश्न है।
हाँ बिल्कुल
सबसे।
हाँ
देखो, अभी आपने बताया कि जीव जो है बोलता नहीं है, लेकिन ये भी बताया कि हमारे ओठ या जीभ दांत को लगती है, नीचे आती है, तालू को लगती है, स्वर यंत्र आगे पीछे होता है, उसके कारण से भाषा निकलती है कि नहीं? हाँ बोलो बेन, जोर से बोलना।
कारण क्या नहीं निकलती थी?
क्यों नहीं पहले ये बताओ।
हाँ अन्योन्य। देखो भाषा वर्गना भी पुद्गल है और ये शरीर जो है वो भी पुद्गल है। दो स्कंध जुदे जुदे हैं, उसमें एक दूसरे में अभाव है, नास्ती है, उसका नाम है अन्योन्य अभाव। एक की दूसरे में नास्ती। दो स्कंध है, दो स्कंध हो गए तो हम कहेंगे ये दो स्कंध है ना, तो इसने इसका कार्य किया कि नहीं, तो इसका इसमें अन्योन्य अभाव है। तो ये टेबल है और ये उसके ऊपर स्टैंड रखे, पुस्तक रखी है, उसके आधार से है कि नहीं, तो उसमें कहेंगे अन्योन्य। ये थोड़ा आगे का विषय है, पर ये समझ
हम यही बताते हैं। हाँ। कि हमारे यहाँ जितने सारे प्रश्न खड़े होते हैं उसके सारों के उत्तर शास्त्र में लिखे हुए हैं, लेकिन हमें फुर्सत नहीं वो पढ़ने को। और जब तक जिनेंद्र परमात्मा ने बताए हुए के अनुसार हमारी मान्यता नहीं होती है, तब तक धर्म की शुरुआत नहीं होती।
धर्म कुछ कठिन है, मैं कौन हूँ बस इतना नक्की करना है, कुछ नहीं करना है। और वो करने के लिए तो कुछ पापड़ बेलने नहीं है। मैं जीव हूँ इतना नक्की करना है। ये तो पाठशाला के बाल पोती को पढ़ाते हैं, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ, बस ये नक्की करो। किसी भी कोई भी चल रहा है, किसी ने गाली दी, मैं जीव हूँ, मैं जान रहा हूँ, उसने गाली किसको देख कर दी?
शरीर
को। तो शरीर को कुछ समझता नहीं है और वो गाली देने वाला, वो भाषा जुदी है, वो जीव जुदा है,
बोलता नहीं है,
बोलता नहीं है। ऐसे सब है। और यहाँ ये अपनी गाथा चली ना 94 नंबर की, यहाँ क्या बात हो रही है? जीव के अनादि से भूल क्या हो रही है? इसको कहते हैं एक जीव और ये अनंत परमाणु। इसके अभी तो एक चीज दिख रही है, तो उसको क्या कहते हैं? असमान जातीय द्रव्य पर्याय। असमान क्यों? एक मैं जीव हूँ और ये बाकी सब, ये जाति कौन सी है? पुद्गल की। वो हिंदू मुस्लिम वाली जाति नहीं, एक जीव मैं जीव जुदा हूँ और ये सारा पुद्गल जो स्कंद बना है वो जुदा है। जुदा है आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जब यहाँ की पर्याय हमारी छूट जाती है, दूसरी भाषा में हम जिसको हम कहेंगे जीव मर जाता है, तो क्या हो जाता है? जीव मर नहीं जाते, जीव चला जाता है और शरीर पड़ा है। दोनों भिन्न थे तभी भिन्न हुए ना, एक में खोते तो भिन्न कैसे हो सकते थे? ये जुदे हुए हैं। अभी अभी तो हम जिसके साथ कोई फीलिंग्स हो रही थी, अब वो तो उसके मुर्दे में तो कुछ नहीं दिखता है, न राग है, न द्वेष है, न ज्ञान है, कुछ नहीं हो रहा है वहां पर। यानी वो जो स्कंद है वो पुद्गल पिंड है, और अभी यहाँ पर वो अभी भी वो पुद्गल पिंड है, अभी भी ये मुर्दा ही, ये बॉडी है। कठिन है अरे सबसे आसान है,
शौक लगता है।
अभी वही है, हाँ अभी भी वही है। तो मेरा प्रश्न है, कौन मरता है? जीव मरता है का शरीर मरता है? शरीर मरने के लिए जिंदा कब था? शरीर तो कभी वो सड़ना अपने से होता है। जीव है तब भी सड़ता है, गैंग्रीन होता है तो क्या हो जाता है? जीव है तो क्यों सड़ा? ऊपर से नीचे सड़ जाता है उसकी योग्यता से। अभी उसकी योग्यता ऐसी है, देखो एक प्रश्न यही है, प्रश्न इनका यह है, जीव है तो क्यों नहीं सड़ता है शरीर? उसका सब कार्य चल रहा है ना, नर्वस सिस्टम, वो तो हार्ट की सब सर्कुलेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब चल रहा है।
नहीं, गैंग्रीन होता है यानी क्या?
वही मैंने उनको पूछा। हाँ हाँ, वो जो होता है वो परमाणु की अपनी अवस्था अपने से होती है। हम क्या है कि वो तो निमित्त रूप से वहाँ जो कुछ बातें होती उसी से होता है मानते, वो उसकी उपस्थिति उसके अपने से अपने में हो रही है। परंतु अभी जीव जो मिथ्या मान्यता कर रहा है तो शरीर के कारण हो रहा है ना। बोलो, अभी अगर शरीर नहीं सड़ रहा है तो जीव के कारण नहीं सड़ रहा है, तो जीव सड़ रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, सड़ रहा है नहीं क्या? अरे चारों गति में घूम रहा है, सड़ ही रहा है ना। तो हाँ, तो पुद्गल के कारण, बोलो अभी बोलो। शरीर ने उसके भ्रम कराया क्या? शरीर ने बोला तू मुझ में मैंपना मान ले, वो तो जड़ है, पुद्गल है। ये घर कहता है कि मैं तेरा हूँ करके, ये हम ही ऐसे सियाने हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अब ये छोड़ के जाने का टाइम आया तो क्या होता है? हाय हाय हाय, मैंने इतना कमाया धमाया, मैंने अपने पुरुषार्थ से सब इकट्ठा किया, अब इसको छोड़ के जाने का टाइम आ गया, तो कितना दुखी होगा, कितना संकलेश परिणाम होगा उसका। पहले से नक्की करो ना, ये मेरे से जुदा है। भले आपकी रोज की गृहस्थी वैसी चलेगी, खाना पीना पैसा कमाना सब चलेगा, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली, अरे बढ़ोतरी हो जाएगी, डोंट वरी। कोई बढ़ोतरी जैसे आने वो अपनी योग्यता से आएंगे। हमें क्या लगता है ये करने लग गए तो हमारा उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा।
देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं।
हाँ।
जब स्वामी जी करीबन 60-70 साल पहले, आज से 60-70 साल पहले, क्योंकि अभी तो 40 साल हो गए उनके गुजरने के बाद, उसके पहले समझ लो 20-30 साल के पहले, वहाँ बम्बई में आए थे, किसी सेठिया के घर में उनको उतरने का मतलब उतारा उनका उधर था, तो उन्होंने अपना बहुत बड़ा घर था, सातवें माले का होगा, तो ये पूरा बता दी, ये संगमरमर लगा है। तो उस जमाने में नीचे भी संगमरमर, दीवार पे भी संगमरमर, तो पूछा स्वामी जी को, केम लाइगू साहेब, यानी कैसा लगा आपको? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, आज छोड़ती वक्त तमने घणु
दुख लगते,
घणु दुख थे, यानी ये छोड़ के जाते हो तुमको बहुत तकलीफ होने वाली है।
देखो अभी जो अभी है ना, अभी उसके प्रति जो हमारी आसक्ति उसको छोड़ दो, नहीं तो क्या होगा, तुम चले जाओगे, लोग ये बॉडी तुम्हारी बाहर निकालेंगे, कोई घर में रखने वाले तुम्हारा करते जल्दी करो। क्या करें, ये ऐसी वस्तु स्थिति है। अब यही कह रहे कि तुम पहले नक्की तो करो कि क्या वस्तु स्थिति है, रियलिटी क्या है। और हमको तो रेडीमेड रियलिटी बताने वाले हैं। सर्वज्ञ भगवान क्या है, सर्वज्ञ कहते किसको, तीन काल तीन लोक की सभी बातें उन्होंने प्रत्यक्ष जानी, और वो ऐसा झूठ बोलने वाले नहीं है क्योंकि वो वीतरागी है। ऐसे कोई अज्ञानता से कारण कोई झूठ बोलता है वो भी नहीं है, पूरा पूरा ज्ञान है और संपूर्ण वीतरागी है। तो सभी बातें उन्होंने बिल्कुल सत्य बातें बताई हैं, और ये बातें बता रहे कि इस विश्व में जो 6 प्रकार के द्रव्य है, प्रत्येक द्रव्य अपने गुणों से भरपूर है, और वो अपनी अवस्थाएं हर समय कर रहा है, कोई उसको दूसरा करने वाला नहीं है। इस जीव की भूल क्या हुई है, मैं एक जीव हूँ और ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय ने शरीर के साथ अभी वो पाया जाता है, यहाँ दोनों इकट्ठे हैं, शरीर मैं हूँ ऐसा मान लिया। देखो यहाँ से पढ़ेंगे कि उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण उसको आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर ही मैं हूँ मानकर बैठा है, ये शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर से जो रिलेटेड वो सब चीजें मेरी है, ये उसकी भूल हो रही है। इसलिए जो सच्चा मैं हूँ जिसको हम आत्मा कहेंगे, उसका उसको अनुभव नहीं हो रहा। यहाँ तक बात हमने वही बात बारंबार बता रहे, देखो 67 पेज पर शुरुआत से। हाँ हाँ हाँ, भगवान आत्मा यानी किसी तीर्थंकर की बात नहीं है, मेरा जो कायमी स्वभाव है जिसको हम कहेंगे अनंत गुणों का पिंड या अनादि अनंत पर्यायों का पिंड, उसको भगवान आत्मा कहा, स्वभाव भाव। यानि मैं जो द्रव्य हूँ स्वयं, पूर्ण स्वभाव, क्योंकि स्वभाव कभी अधूरा नहीं होता, वो परिपूर्ण होता है। स्वभाव हमेशा होता है, अनादि से अनंत काल तक रहता है। स्वभाव तो अनादि अनंत स्वतः स्वयं से है, बना है ऐसा भी नहीं, उसको कोई बिगिनिंग ही नहीं है। वो परिपूर्ण होता है, अमर्यादित होता है, और जो स्वभाव है वो पर्याय में प्रकट करे ऐसी पूरी शक्ति उसमें पड़ी है। हमें केवल करना क्या है, उसका जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसका स्वीकार करना है। स्वीकार भी बुद्धि से, किसी ने कहा इसलिए नहीं, ये क्यों ऐसा कहा है, बिल्कुल जिसको लॉजिक से, हमको उसको सुनना है और समझना है और स्वीकार करना है। देखो, पूर्ण स्वभाव एनो जे अनुभव, एन देखो, आत्मा का अनुभव होते ही अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा सुख के अभी किसी इंद्रियों के विषय से हमको ये सुख नहीं मिला है, ऐसे सुख की अनुभूति होती है, तभी आत्मा का अनुभव हुआ ऐसा कहते हैं। देखो तो वो कब होगा, उसके सामने हम नजर करेंगे, उसमें एकाग्र होगी, उसमें कॉन्सेंट्रेशन होगा, तब उसका अनुभव होगा। तो एनो आश्रय यानी उसका आश्रय, एनु संचेतन, संचेतन चेतन यानी उसका सम्यक प्रकार से संचेतन यानी अनुभव, जागू जिसको कहते जागृत हुआ, अपने स्वभाव में जागृत हुआ। अभी तक क्या है, पर में जागृत था, स्वभाव के लिए सोया हुआ था। अब आत्मा का अनुभव है ना, स्वभाव में जागृत हुआ, अभी पर के तरफ व्यवहार में सोता है, ऐसा कुनकुंदाचार्य कहते ऐसा। एनो अभाव छे यानी आत्मा के अनुभव का अभाव है, किसके, जिसने शरीर ही मैं हूं मान लिया है, उसको आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। ए नपुसकता छे, नपुसकता यानी जैसे हम कहें व्यवहार में कहते नपुसक ही जड़ा है, उसको वीर नहीं, उसके पुत्र नहीं होगा, यानी कोई बच्चा नहीं होगा, ऐसे कहते ये जो अपने को नहीं माना है तो पर में ही अपना उपयोग लगाया है, तो उसके सामर्थ्य होते हुए भी जिसको कि कमजोर है, असमर्थ हो रहा है, किसके लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए। जे वीर्य, वीर्य ने ताकत उसकी जीव की, द्रव्य स्वभाव ने अवलंबी ने, अवलंबी ने द्रव्य स्वभाव का आश्रय करना, द्रव्य स्वभाव का आश्रय करना ने अपने को ही अपना स्वरूप समझकर उसी में एकाग्र होना, लीन होना। द्रव्य ने त्रिकाली ज्ञायक नो अनुभव करे ते मरद छे, यानी जो अपने आत्मा का अनुभव करता है वही सच्चा मरद है, यानी वही सामर्थ्यशाली है। ते मरद नु वीर्य छे, मर्द समझते ने मर्द, ए आत्मा नु वीर्य छे। आहा हा, अभी वातु पहली तत्सूत्री आदि क्रिया माती निकली ने, यानी जो भगवान के हमने जाकर दर 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 पाठ याद किया है वो तो बोल देता है। आमा आउ लोगों ने कठिन पड़े, यानी जो अन्य अन्य पाठ उसने पहले से समझ के रखे, सामायिक के हो, प्रतिक्रमण के, अन्य जो कुछ है वो बोलता है, मानता है मैंने धर्म किया, वो छोड़कर इसको स्वीकार करना कठिन पड़ता है, ये कह रहे।
पर
वो सूत्र है ना, यानी मैंने जो कुछ ये मेरे से जो कोई पाप हुआ है, गलतियां हुई है, ये सब मिथ्या हुआ।
अरे भाई एक दिन बोलो, चार चार बोले तो मैं समझ नहीं पाता। अच्छा वो बोलने से निकल जाता है,
उसी को धर्म मानते हैं अभी तक। हाँ
हमारा अज्ञान है, हम बता रहे हैं आपको, कुछ नई नई बात मिलती है ना।
तो कहते वो उसको धर्म माना था, वो छोड़कर इसको स्वीकार करना लोगों को कठिन लगता है, पर आ तो परम सत्य छे प्रभु, जगतनी साथे मेल न खाए। देखो कांजी स्वामी पहले स्थानक वासी संप्रदाय में थे, वो मुंबुट्टी वाले, वहाँ तो ऐसी सारी बातें चलती थी, इन क्रियाओं में ही धर्म मानते थे। अब उन्होंने स्वयं वो सारा छोड़ा, वहाँ तो उन्होंने वहाँ का मुनि पद लिया था, वो छोड़कर यहाँ उन्होंने कहे कि मैं अभी ऐसे दिगंबर हूँ, वो मुंबुट्टी छोड़ दी और अपने को दिगंबर में साधारण श्रावक हूँ, इस तरह से उन्होंने बता दिया। तो वहाँ क्या बातें चलती थी, वहाँ क्या मान्यता थी, उनको सब मालूम था। इसलिए उसका बारंबार निषेध करते हैं, क्योंकि सही धर्म क्या है वहां रहते हुए भी। वो तो दिगंबर शास्त्री फॉलो करते थे सालों तक, वो प्रवचन भी देते थे, उसी गांव में जाते थे जहाँ दिगंबर शास्त्र पूरे वो रखते थे, वहाँ वो कहते थे वो हम लिखेंगे उसको तो स्वामी जी हमारे गांव में आएंगे। यानी उन्होंने वहाँ की दीक्षा ली, तब से 2 साल में उन्होंने अंदर से सारे सिद्धांत न्याय उनके आते थे और सही पूरी मान्यता तब से। परंतु यानी वो पंथ छोड़ना भी चाहते थे, उनके भाई ने बताया उस दिन बाद आई थी ना, हाँ अभी अभी मत करो नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी बाहर। यहाँ क्या कहते, परंतु उनका ऐसा था कभी सत्य बात को किसी भी नो कॉम्प्रोमाइज, सत्य वो सत्य बस, और हाँ एडजस्टमेंट नहीं, जगतनी साथे मेल न खाए, यानी जगत के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती है, वो जगत में जो धर्म के नाम पर चलते हैं उसके
जगत एक्सेप्ट करे
हाँ नहीं करते। ये थी सत्य कहीं असत्य न कही जाए, क्योंकि सत्य मानने वाले थोड़े हैं, इसलिए सत्य कुछ असत्य नहीं हो जाता। परम सत्य प्रभु आओ जे भगवान स्वरूप आत्म स्वभाव। हमारा आत्म स्वभाव अभी है कि नहीं है, हर एक का अपने पास के चला गया कि केवल ज्ञान होने पर आएगा, है अनादि से है, इसलिए उसको कहे परम सत्य है। हम वो है कि नहीं, हाँ तो ये कह रहे परम सत्य प्रभु, कौन हमारा आत्म स्वभाव, हाँ भगवान स्वरूप आत्म स्वभाव। 6 आत्मा भले द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप, पण एनो द्रव्य स्वभाव जे छे एनो जे अनुभव जोईए, एनो अनुभव करवाने अज्ञानी नपुसक छे। यानी द्रव्य स्वभाव जो है उसका अनुभव करना चाहिए, तभी तो धर्म की शुरुआत होगी, तभी तो जीव को सुख की शुरुआत होगी। तो कहते वो अनुभव करने के लिए अज्ञानी असमर्थ है, क्यों, क्योंकि उसने शरीर मैं हूं मान के रखा है। उसके सारे प्रश्न इसीलिए उठते हैं कि हमको ये करना कि नहीं करना, वजन करना कि नहीं करना, क्यों शरीर की उसकी, मैं किस में माना, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं माँ हूं, तो मुझे ये करना कि नहीं करना, यानी मैं अमुक हूं माना तो मैं ये करना कि नहीं करना प्रश्न आते हैं। अब ये नक्की करो मैं जीव हूं, कायम रहने वाला हूं, अनंत गुणों का मैं ज्ञान दर्शन इसका पिंड हूं। अब बोलो मुझे क्या करना क्या नहीं, क्या क्या प्रश्न उठते बोलो आपके दक्षा में, सारे प्रश्न पूछो अभी। प्रोवाइडेड मैं किस में रखना है आपको, मैं वो कायम रहने वाला द्रव्य स्वभाव मैं जीव हूं। अब जितने प्रश्न उठते हो उठाओ, बंद हो गए सारे क्योंकि मैं मनुष्य हूं तो सारे प्रश्न उठ रहे थे, क्योंकि मैं पना कहां गलत जगह स्थापित किया था, जो सच्चा मैं हूं उसको मैं माना ही नहीं, और जो ये जड़ है मैटर है परमाणु का ढगला है उसी को मैं मान के रखा, और वे सारे प्रश्न शुरू हो गए उसके। कॉन्फ्लिक्ट भी इसीलिए यहां पड़ता है कुछ अलग, यहां तो मैं जीव हूं ये मानकर ये सब बातें हो रही, और ये सोचता रहता है मैं मनुष्य हूं, या तो ये कहते मुझे तो ऐसा करना है, मुझे तो ऐसा करना है, ये बातें चलती रहती। आओ बे, ये सेकंड पैराग्राफ वहां से पढ़ते हैं हम, ये प्रवचन सार चल रहे हैं, प्रवचन सुधा भाग 4। परम सत्य प्रभु, कौन सत्य, मैं स्वयं भगवान स्वरूप आत्म स्वभाव। तो कहते आत्मा कैसा है, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, परंतु अज्ञानी को उसका अनुभव नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि असमान जाति द्रव्य पर्याय किसको कहते हैं, हाँ जीव और पुद्गल की मिली जुली जो पर्याय, ये वह मनुष्य तो यह मैं हूं मानता है, इसलिए उसको आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, बस इतनी बात चल रही है। अने मनुष्य देह आदि ऊपर लक्ष्य करीने, आदि क्यों कहा, क्योंकि मनुष्य तो अपने मनुष्य देह पर लक्ष्य करता है, तीर्यंच है उसके अपने देह है उसके उस शरीर पर लक्ष्य करते है, अपने को शरीर मानते हैं तो शरीर का लक्ष्य चल रहा है। आदि ऊपर लक्ष्य करीने तेनो अनुभव करवाने उदार छे ए नपुसक छे। इसका अनुभव कर रहा है वो शरीर रूप अपने को मान रहा है। हाँ आवी वातु छे ओहो हो दिगंबर संतोए गजब काम कर्या छे। केवड़ी ने भुलावी दे क्योंकि केवल ज्ञानी ने जो उपदेश बताया वो दिगंबर संतों ने हम तक पहुंचाया है। केवली ने भुला दे क्योंकि आजकल केवली कहाँ है हमारे पंचम काल में तो ना तीर्थंकर है ना सामान्य केवली है। तो कहते हमारे लिए तो इन्होंने तो केवली जैसा काम कर दिया है। पांचवा आरामा अभी एक पांचवा काल चल रहा है ना वो संडे के दिन चला था ना अपने क्या पहला दूसरा तीसरा काल अभी पांचवा काल चल रहा है। तो पांचवा आरामा केवड़ी न थी क्योंकि इस काल में कोई क्षपक श्रेणी ना चढ़ता है ना उपशम श्रेणी चढ़ता है यहाँ तो कोई केवली तो होते नहीं इस काल में। एने भुलावे एवं संतोए काम करियो छे। भुलावे का अर्थ क्या क्योंकि उनकी उपस्थिति नहीं है फिर भी उनके जैसा काम कर दिया उन्होंने क्योंकि ये ज्ञानी के उपदेश से ही ये मार्ग आगे चलेगा। तो उन्होंने ऐसा उपदेश दिया है तो आज तक हमें वो 2000 साल पहले हो गए। कुदकुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य उनके बाद 1000 साल से हुए तो उन्होंने उस पर टीका लिखी और हम इतने भाग्यवान दोनों ही हमको अवेलेबल है। बीच में जितने ज्ञानी हुए कितने पंडितों ने उस पर टीकाएं वगैरह लिखी है बीच में जयसेन आचार्य भी उन्होंने भी अपनी टीका लिखी है। तो ये हमें आज उपलब्ध है कि हम अपना अनुभव कर सकें फिर भी क्यों नहीं कर रहा है। मैं मनुष्य हूँ मानकर बैठा है ये उसकी भूल है और कुछ भूल नहीं है। जेमा भवनो अंत आवे एवी दृष्टि करी नथी। इसका अर्थ क्या है भवना भव का अंत का अर्थ क्या है? आप कहेंगे हाँ हमारी आयु पूरी होने पर भव का अंत होगा ना। भव का अंत होगा पर भव भ्रमण का अंत नहीं होगा। भव का अंत यानी संसार यानी जो जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण कब से कर रहे अनादि से। कहने के लिए इतने हम आदि हो गए अनादि का एहसास नहीं होता है अनादि क्या होता है।
ये भव कह रहे हैं अनादि से है कब तक चलेगा बेन। अच्छा मैं बोला अनंत काल बोलती है।
तो हम अभी है और हमने इतना ही मान के रखा है इसलिए क्या लगता है अरे अभी कितने दिन रह गए अभी हम बूढ़े हो गए अभी हम मर जाएंगे। मर जाएगी तो तेरा अस्तित्व मिट जाएगा। अरे नहीं मैं तो अनादि से हूँ अनंत काल तक रहने वाला हूँ। परंतु क्या हुआ अभी मनुष्य भव में हूँ इसके पहले अन्य किसी भव में था। तो मनुष्य तीर्यंच देवनार के तो इसमें से घूमता ही रहा ना अनादि से। तो क्या अभी ऐसा ही चलना है क्या हमें क्या लगता है नहीं नहीं अभी तो सब ठीक ठीक है इसमें से कहीं जाना आना अच्छा नहीं लगता सुहाता। तो कहते तो पर ये तो नक्की है ना कि ये बहुत लिमिटेड है अभी इसके बाद तो कोई दूसरा भव लेना पड़ेगा। ऐसा कितना और कहाँ कितना करना है इसमें बजा आ रही है ना नहीं आ रही है तो इसमें से छूटने का विचार नहीं कर रहे हैं क्या है। जेमा भवनो अंत आवे यानी ये जन्म मरण कायम के लिए छूट जाना चाहिए। जो कार्य अरिहंतों ने किया है जो अभी सिद्ध हुए उन्होंने कर दिखाया है वो भी जीव द्रव्य हम भी जीव द्रव्य जो वो कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते क्योंकि अनंतों ने कर दिखाया है। अनंत जीव अभी सिद्ध पर्याय में है तो अगर बहुत दुर्लभ होता कठिन होता तो इतने अनंत जीव करते क्या। और ये बात इसका पूरा मार्ग अरिहंतों ने हमको बताया और संतों ने हमारे लिए ये सब लिख के रखा है और आज तक हमको ये मिला है और गुरुदेव ने कांजी स्वामी ने तो इसको और सरल 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 करके हमको पिरसा है। अभी हम ही कहेंगे तो हमारे जैसे दुर्भाग्य हम ही होंगे अगर इसका हमने फायदा नहीं लिया तो। इसको कहते हैं ना वो अवसर चूकने योग्य नहीं है। क्या कहते हैं जेमा भवनो अंत आवे यानी जन्म मरण कायम से मिटे एवी दृष्टि करी नहीं थी ऐसी दृष्टि नहीं की। दृष्टि का अर्थ होता है मैं पना की मान्यता कहाँ रखनी है कहाँ रखनी है
इसका अर्थ कोई बतावे तो अच्छा है।
ये
पहला वाक्य रिपीट करो आप
देखो यहाँ क्या लिखा है जेमा भवनो अंत आवे एवी दृष्टि करी न थी उसका अर्थ क्या है रक्षाबेन। दृष्टि करी न थी क्या अर्थ मान्यता है नहीं कैसे मैं पना की मान्यता दृष्टि किसको कहेंगे दृष्टि हमेशा मैं को स्वीकारती है, ज्ञान सबको जानता है, स्व को भी, पर को भी, पर्याय को भी, स्वभाव को भी, गुण को भी, सबको जानता है, भेद करके जानता है वो ज्ञान। दृष्टि क्या स्वीकार करती है, मैं कौन हूँ, उसमें मैंपना स्थापित करती। अब शरीर मैं हूँ मान लिया तो दृष्टि कहाँ रखी, शरीर में। दृष्टि किसकी करनी है, जो मैं स्वयं सचमुच हूँ वो, जो मैं जीव द्रव्य हूँ, कायम टिकने वाला हूँ, जिसको हम ज्ञायक भाव कहेंगे, पारिणामिक भाव कहेंगे, आत्म स्वभाव कहेंगे, नाम कुछ भी दे दो, उसमें मैं हूँ ऐसे कभी माना ही नहीं, इसको कहते दृष्टि कभी की नहीं। श्रद्धा कहो, प्रतीति कहो, दृष्टि को एक ही बात है। तो जेमा भवनो अंत आवे एवी दृष्टि करी नथी, यानी सम्य दर्शन कभी हुआ नहीं उसको, आत्म स्वभाव नो अनुभव करियो नथी। हाँ हाँ, दूसरी भाषा में क्या, आत्म स्वभाव का अनुभव नहीं किया, क्योंकि दृष्टि होते आत्मा का अनुभव होता है, अनुभव है तो ज्ञान की पर्याय और दृष्टि है वो दर्शन की पर्याय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आत्मलीनता उसी समय हुई है, आत्मा का अनुभव उसी समय हुआ है, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव उसी समय हुआ है, और उसी समय दृष्टि सम्यक सही हो गई, यानी जो सचमुच मैं हूँ उसमें मैंपना स्थापित हो गया। भगवान पूर्ण आनंद ज्ञायक स्वरूप छे, भगवान ने मैं स्वयं, भगवान जब कह रहे हैं तो अपना ज्ञायक भाव, कायमी स्वभाव, उसको यहाँ भगवान कहते हैं। तो भग यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन सी, अनंत गुणों की लक्ष्मीवान मैं हूँ, और वो कैसे, पूर्ण आनंद ज्ञायक स्वरूप जानने वाला मैं हूँ। पहलू समय सार 156 गाथा में आयु ने विद्वज्जनों भूतार्थ तजी, यानी भूतार्थ का त्याग करके व्यवहार में वर्तन करे, तेम आयु के विद्वानों निश्चय छोड़ीने व्यवहार में वर्ते छे। निश्चय छोड़कर व्यवहार में वर्ते छे अर्थ क्या है, आत्मा का अनुभव करना ये निश्चय है, उसकी दृष्टि उसके छोड़कर व्यवहार में वर्तते हैं क्या, जिसको एक्चुअली निश्चय उसके जो राग भाव है, देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, व्रतादि है, उसको व्यवहार कहेंगे। परंतु यहाँ क्या है, भोले जीव कहो, अज्ञानी कहो, मूर्ख कहो, क्या कहते हैं वो, केवल बाह्य व्रतादि का अंगीकार करते हैं, आत्मा का अनुभव बात वो तो सोचते ही नहीं है। तो उसको कहते भूतार्थ का त्याग करके व्यवहार में वर्तते हैं। जारे नियम सार 58 श्लोक छे, 41वीं गाथा नो छे, शू कहूं, श्लोक है वो कलश होते हैं। यहाँ क्या लिखा, 58वां श्लोक और 41 गाथा, उसका अर्थ क्या है, प्राकृत में वो गाथाएं हैं और श्लोक है उसके टीका के हैं। किसने लिखी है, पद्म प्रभ मलधारी देव ने, मुनिराज थे, उन्होंने टीका लिखी नियम सार की। तो गाथा थी 41वीं और उस पर जो संस्कृत श्लोक टीका लिखी थी उसमें श्लोक जो अलग अलग कहीं एक होते कहीं दो चार लिखेंगे, तो वहाँ 58 नंबर का श्लोक आया। शू कहूँ, 41 गाथा माँ ये नियम सार की बात हो रही है, शायिक भाव कौन जीव माँ नथी एम कीधु छे, क्या कहा, शायिक भाव इन्हें कौन सा, कोई भी इच्छा हो शायिक भाव बताओ, क्षायिक ज्ञान किसको कहेंगे, केवल ज्ञान, वो क्षायिक भाव हुआ ना, तो वो भी जीव में नहीं है, क्यों कहा, क्योंकि उसके लक्ष्य से शुद्धता प्रकट नहीं होती, वो पर्याय है। यहाँ किसको लेना है, स्वभाव भाव, कायमी जो रहने वाला स्वभाव भाव है उसको लक्ष्य करना है। एक एक पर्याय को लक्ष्य करेंगे तो राग की उत्पत्ति होगी, इसलिए जीव का नहीं है करके छोड़ दिया, जीव में ही हो रहा है ना, है, परंतु कायमी स्वभाव को यहाँ जीव में रखना है, बाकी को गौण करके हमने नहीं ये कह दिया, जीव में से कहीं चला नहीं जाएगा, तो उसका लक्ष्य करने से, उसके आश्रय से और नई शुद्धता प्रकट नहीं होती है, इसलिए उसको नियम सार में जीव का नहीं ऐसा कहना। कहाँ कौन सी अपेक्षाएं बात है बराबर समझना, अभी हमारा यहाँ जो विषय चल रहा है ना, वहाँ तो क्या कहते हैं, वो राग भाव भी क्यों होना, वो जीव का है, वो अपने द्रव्य और गुण से उत्पन्न होता है, पर द्रव्य से नहीं, ये बिल्कुल बेसिक बात यहाँ चल रही है, नियम सार में बहुत एडवांस बात है, और वो कुनकुंदाचार्य कहते हैं मैंने अपने लिए लिखी है, जिसको ये सब बात मालूम है, अनुभव हुआ है, उसके और अधिक आगे बढ़ने के लिए वो सारी बात बताए। क्या कहते हैं, क्षायिक भाव पण जीवमां नथी एम कीधुं छे, एथी ए गाथामां એટલે 58માં કલશમાં આમ નાખ્યું છે અને ઐસા ઉસમે ડાલા હૈ જેમાં ક્ષાયિક ભાવ નથી, અને જિસમે ક્ષાયિક ભાવ ભી નહીં હૈ, કિસમે સ્વભાવ મેં, ક્યુંકિ સ્વભાવ મેં કોઈ અલગ પર્યાય દિખેગી તો સ્વભાવ નહીં કહેંગે, સભી પર્યાય જિસમે અભેદ અખંડ એક કહીએ ને હમને, હા તો તભી ઉસકો હમ દ્રવ્ય કહેંગે, તભી હમ ઉસકો સ્વભાવ કહેંગે। આત્મદ્રવ્ય સ્વભાવ તો જો આત્મદ્રવ્ય સ્વભાવમાં ઉદય ભાવ તો નથી, ઉપશમ તો નથી, ક્ષોપશમ તો નથી, ક્ષાયિક ભાવ પણ નથી। અભી ઇસકી બાત કરેંગે થોડા। તત્વાર સૂત્ર મેં ક્યા કહા, એ જીવ કે કૈસે ભાવ હૈ, અસાધારણ ભાવ હૈ, નામ બતાએ કે કોણ કોણ સે, આશાબેન અસાધારણ ભાવ હૈ, કોણ સે પાંચ ભાવ બોલો, ઔપશમિક परिणाम, ये पांच भाव जीव के है, और वो कैसे जीव के अपने भाव है, जीव की पर्याय है, अपने भाव का अर्थ है ये जीव की पर्याय है, जीव में होती है, जीव के अपने होती है, ये पर्याय ऐसी पर्याय पुद्गल में तो नहीं हो रही, अन्य द्रव्य में नहीं हो रही, ये जीव की अपनी है, इसलिए उसको असाधारण कहा, विशेष भाव कहा जीव के। अब इसमें स्वभाव भाव कैसा है, अनादि अनंत कायम रहने वाला, और चार भाव कौन से, देखो औदयिक शब्द कैसे तैयार हुआ, कर्मों का उदय है, जीव का अपना भाव है, राग द्वेष के परिणाम जीव ने स्वयं किए हैं, सामने कर्मों का उदय वहां उपस्थित अपने कारण, तो कर्मों की तरफ से इस भाव का नाम क्या है, औदयिक, उदय से औदयिक शब्द तैयार हुआ। जीव जब तत्व विचार करता है और सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो उसको औपशमिक सम्यक तो हुआ, ऐसा कहेंगे, उसने तो सम्यक तो प्राप्त किया, उस समय कर्मों में अवस्था क्या थी, वो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का उपशम ने दब गए, उदय में आ रहे थे अनादि से, अभी वो दब गए, और यहाँ उतने काल में जीव ने सम्यक तो प्राप्त किया अपने से, पर वो वहां की कौन सी उपशम अवस्था है उसको देखकर जीव के भावों को नाम क्या दिया, औपशमिक, नाम पूर्ता उसका कर्म क्या उसमें है, कर्म ने जीव में कुछ नहीं किया है। तीसरा कौन सा देखा, क्षायोपशमिक, ये जो अनादि से ज्ञान दर्शन और ये जो वीर्य वगैरह का जो कैसा चल रहा है, क्षोभशम हो रहा है, कुछ उघाड़ है, कुछ अनु जैसे पूरा स्वभाव प्रकट नहीं है, और वो भी हिनादिक होता है, उसको कहेंगे क्षयोपशमिक भाव, क्षयोपशम शब्द से क्षयोपशमिक ये शब्द तैयार हुआ। एक क्षायिक, कर्म का अनादि से उदय था, जैसे ज्ञान आवरण था, कहाँ तक, तो 12वें तक था, बाद में क्या हुआ, उसके अंत में उसका क्षय हो गया, और जीव को क्षायिक भाव, क्षायिक ज्ञान प्रकट हो गया, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का क्षय हुआ, तब क्षायिक सम्य दर्शन प्रकट हुआ। तो क्षायिक में क्या लेते हैं, कर्मों का अभी वहां कुछ नहीं रहा, वो अभाव रूप हो गए, कर्म की वहां उपस्थिति ही नहीं है, उसको कहेंगे जीव के भाव को क्या कहेंगे, क्षायिक भाव, कर्मों ने नहीं उत्पन्न किया है, जीव ने अपने स्वयं की योग्यता से केवल ज्ञान उत्पन्न किया है, पर वहां ज्ञानावरण कर्म अभी नहीं रहा, तो कहेंगे एक क्षायिक भाव है। नाम कहां से दिए, निमित्त की तरफ से नाम दिए जाते हैं, जैसे घड़ा बना ये कार्य हुआ, हम क्या कहते, किसने घड़ा बनाया, तो कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो यहां शास्त्र में ये पद्धति है कि किसी ये किसका कार्य हमको ढूंढना है, तो पहले प्रश्न पूछो कि ये जो कोई भी जो कार्य हुआ है उस रूप कौन परिणमित हुआ, तो घड़े रूप कौन परिणमित हुआ, कुम्हार स्वयं घड़े रूप हुआ क्या, नहीं, तो कौन हुआ, माटी, तो ये मिट्टी का कार्य है, तो घड़ा बना ये कार्य हुआ, परंतु वहां दो कारण है, मिट्टी की स्वयं की योग्यता घड़े रूप होने की, उसको उपादान कारण कहते हैं, उस समय कुम्हार वहां उपस्थित था, उसके जो कुछ जो कोई योग उपयोग उसमें निमित्त कहेंगे वो निमित्त है, प्रत्येक कार्य में द्रव्य की निज शक्ति है वो उपादान है, वहां अन्य द्रव्य की उपस्थिति वो है निमित्त, पर निमित्त उस कार्य में कुछ नहीं करता है, ये नक्की करना, तो कारण दो, कार्य एक, तो उस कार्य के नाम भी दो, कुम्हार है निमित्त, उसकी तरफ से वो घड़े को क्या कहेंगे? नैमित्तिक। और माटी की तरफ से उसको क्या कहेंगे? वो उपादान है, उपादेय। अभी यहाँ बात है जीव के भावों की। जीव का कोई भी भाव क्यों ना हो, राग वेश हो या ज्ञान हो या समय दर्शन हो या केवल ज्ञान, जो कुछ हो, जीव का अपना भाव अपने से हुआ है, वो अपने उपादान से हुआ। उसमें निमित्त हमको देखने हैं। पाणिनि महाविक भाव स्वभाव उसमें कोई निमित्त नहीं है, क्योंकि वो कार्य नहीं, वो तो अनादि से है। बात रही चार भावों की, वो चार भाव है ना जीव के पर्याय के भाव है। स्वभाव भाव तो कुछ पर्याय नहीं है, तो पर्याय कौन सी है? ये जो औपशमिक है, यक्षाउपशमिक है, यक्षायिक है, औदयिक है, ये क्या है? जीव की पर्याय है। किसके कारण हुई? जीव के अपने स्वयं की योग्यता से, उसको हम उपादान कहेंगे। निमित्त किसको देख रहे हैं? हम कर्म, कर्म की अवस्था को हम निमित्त कह रहे हैं। अभी इन भावों का नामकरण कर्म की तरफ से कर रहे हैं, निमित्त की तरफ से उसको नाम दे रहे हैं। कर्म ने कुछ नहीं किया है, सारे ही जीव के भाव जीव के अपने कारण हो रहे हैं, परंतु निमित्त की तरफ से उसको नाम देने में आता है। हमने निमित्त की तरफ देखा तो कर्म का उदय था, यहाँ क्रोध कर्म का उदय हो रहा था, यहाँ जीव ने क्रोध किया। मिथ्यात्व कर्म का उदय है, यहाँ जीव मिथ्यात्व कर रहा है स्वयं अपने से, कर्म ने नहीं कराया है। कर्म तो उसका इंडिकेटर है, जैसे थर्मामीटर में वो मर्क्यूरी के आपका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करता है, वो बताता है। कर्म बताने वाले हैं, ज्ञापक कहते हैं उसको, वो कराते नहीं जीव में कुछ, परंतु उनकी तरफ से जीव के भावों को हमने नाम दिए। कर्मों का उदय है तो जीव के भाव को औदयिक कहा, कर्म का उपशम है तो जीव के भाव को औपशमिक कहा, कर्म में क्षोपशम है तो जीव के भाव को क्षौपशमिक कहा, कर्मों में क्षय जब हो चुका है तभी वो कायम उसके भाव को वो अक्षायिक कहेंगे। तो ये सारे पर्याय रूप भाव है और कर्म की तरफ से उसको नाम देते हैं, इसलिए वो नैमित्तिक भाव ऐसा भी उसको कहने में आता है। यहाँ क्या कहते देखो, यहाँ लिखा ना आत्मद्रव्य स्वभाव मा, यानी जो पारिणामिक भाव है उसमें वो स्वभाव भाव है, उदय भाव तो नथी, यानी औदयिक भाव नहीं है, उपशम तो नथी, क्षोपशम तो नथी, क्षायिक भाव पर नथी। क्यों? ये सब पर्याय रूप भाव है और स्वभाव में वो पर्याय को अलग अलग कोई गिना नहीं है, क्योंकि स्वभाव हम उसी को कहते हैं। वो सभी पर्यायों का भेद हमने गौण कर दिया है तभी हमको स्वभाव दिखेगा।
पर्याय एक समय की होती है और स्वभाव अनादि अनंत होता है, इस अपेक्षा से
बिल्कुल
वो स्वभाव में नहीं है, ये बात
स्वभाव में नहीं है। और वो भेद हुआ ना, पर्याय का लक्ष्य करने जाए तो भेद है, और भेद को दृष्टि में लेते हैं तो राग की उत्पत्ति होती है, और इसलिए हम वो भेदों को गौण कर देना है और स्वभाव को लेना है। क्योंकि हमने देखा ना द्रव्य क्या है, अनादि अनंत पर्यायों का पिंड है, तो अनादि से उसमें जो कोई औदयिक क्षायिक जो कुछ भाव हो रहे थे वो सब क्षायिक भाव तक सभी को गौण कर दिया। आत्मद्रव्य तो कायम है कि नहीं है, निगोद से लेकर सिद्ध दशा तक कितने अलग अलग भाव हुए जीव के, परंतु वो भावों को अलग अलग नहीं गिनना है, वो द्रव्य के भाव थे, उसको गौण कर दिया और द्रव्य को अखंड एक द्रव्य को, इसलिए कहते आत्म स्वभाव में वो नहीं है, उस दृष्टि में वो नहीं दिखेंगे। समझ में आती है ना बात, वो दृष्टि की बात है, उसमें अगर वो दिखाई दे तो वो तो वो स्वभाव की दृष्टि नहीं हुई, वो पर्याय की दृष्टि हो गई। ये दो लाइन पढ़ते हैं फिर कल पढ़ेंगे बाकी। देखो एवो जे आत्मद्रव्य स्वभाव छे एने विद्वानों पंचम गति नी प्राप्ति माटे ए पंचम भाव ने स्मर, यानी अपने स्वभाव भाव को स्मरता है, यानी उसको याद करता है का अर्थ होते है, उसमें एकाग्र होते हैं तो पंचम गति का अर्थ क्या है? सिद्ध गति की प्राप्ति होती है, सिद्ध अवस्था में आने, यानी इसको विद्वान किदा, यानी वो विद्वान है जो अपने आत्मा का अनुभव करेंगे, बाकी वो तो पढ़ाया और पढ़ाया, दूसरों को पढ़ाया, सीखा और सिखाया, उसको विद्वान नहीं कहा। पहला मैंने उसमें समय सार 156 गाथा मां विद्वान एने किधा के जे शास्त्र माथी व्यवहार गोती ने काढ़ो, वहां तो विद्वान कह के उसका उपहास करना था, इसलिए उसको विद्वान कह दिया कि वो व्यवहार व्यवहार को निकाल निकाल कर दिखा रहा है। और यहाँ विद्वान उसको कहा जो पंचम गति की प्राप्ति करता है, निश्चय पड़े रहे। अभी यही रुकेंगे हम,
एक प्रश्न।
हाँ प्रश्न,
समय सारजी में आता है
आत्मा अबद्ध अस्पृष्ट असहाय अविशेष याद है अबद्ध जो है उसका एक्सप्लेनेशन देने से बोलते हैं कि मोह राग द्वेष और स्वभाव भाव इसमें वज्र की दीवार है ऐसा आता है तो ये किस अपेक्षा से है
अभी आपने सुना ना किसमें वज्र की दीवार है आपने अभी क्या पूछा ना किसमें किसमें किसमें
स्वभाव में
और
ये जो विभाव रूप पर्याय
विभाव रूप पर अभी यहाँ विभाव रूप पर्याय को हमने औदयिक भाव कहा और यहाँ तो क्षोभम भाव को भी विभाव में डाला क्योंकि हीना दिखता होती है तब तक वो विभाव है समझ में आई
होते तो
जीव के होते हैं पर क्षणिक है विभाव है वो उसका स्वभाव नहीं है इसलिए स्वभाव में वो है ही नहीं है हाँ बिल्कुल इसलिए वज्र की दीवार कहा जावानी के ज्ञान दे सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा दे
नमो अरियंता नमो सिद्धांत नमो अज्ञान नमो विज्ञान नमो